आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश 2030 तक नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करेगा, कहा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने। कल से होगी प्रदेश भर में स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत। भारतीय टीम ने पुरुष हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जगह बनाई। और प्रदेश के कई हिस्सों में कल से तेज बारिश होने के आसार, 38 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज गुजरात के गांधीनगर में ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट और एक्सपो में शामिल हुए। इन्वेस्टर्स मीट को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि रिन्यूएबल एनर्जी का समय चल रहा है। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जो नवकरणीय ऊर्जा में तीनों फॉर्मेट में काम कर रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा की दिशा में हो रहे कामों की चर्चा की।
मध्यप्रदेश असंभव को भी संभव करने में अपनी विशेष भूमिका रखता है। यही कारण है कि मां नर्मदा सुप्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ओंकारेश्वर में दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना विकसित कर रहे हैं। इसके साथ 200 मेगावाट का सोलर पैनल भी हम यहां लगा चुके हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार से पानी के वाष्पीकरण से जो हानि होती है उससे बचाने के लिए एक बड़ी हमारी ये भूमिका रहने वाली है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में अगले साल फरवरी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए भी इस सेक्टर के निवेशकों को मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने नवकरणीय ऊर्जा के माध्यम से वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य दिया है। प्रदेश इस लक्ष्य को हासिल करेगा। चौथे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट और एक्सपो री इन्वेस्ट 2024 में मध्य प्रदेश के साथ ही आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहे हैं। इस वर्ष समिट के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों में ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी और नॉर्वे जैसे देश भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर देश में शुरू हुए स्वच्छता अभियान में प्रदेश कई कीर्तिमान स्थापित कर चुका है। प्रदेशवासियों ने पूरे उत्साह और जन सहयोग से स्वच्छता के क्षेत्र में नए आयाम भी स्थापित किए हैं। इसमें जहां एक ओर 2022 के स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रदेश को सबसे स्वच्छतम राज्य का दर्जा मिला, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के इंदौर शहर ने लगातार 7वीं बार देश के सबसे स्वच्छ शहर होने का गौरव प्राप्त किया है। एक पखवाड़े तक चलने वाले अभियान के पहले दिन राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सभी जिला चिकित्सालयों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों का शुभारंभ भी करेंगे। यह कदम प्रदेश के नागरिकों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण प्रयास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू हो रहा अभियान 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती तक चलेगा। इस वर्ष अभियान की थीम स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता रखी गई है। इसमें अधिक से अधिक जनभागीदारी और स्थानीय निकायों की भागीदारी पर जोर दिया गया है। खंडवा, रायसेन, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी और सीहोर सहित सभी जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित होंगे। केंद्र सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग SSC को अलग अलग स्तरों की परीक्षाओं के दौरान उम्मीदवारों को स्वैच्छिक रूप से आधार प्रमाणीकरण के लिए अधिकृत किया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने परीक्षार्थियों को आयोग द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं के विभिन्न चरणों में और पंजीकरण पोर्टल पर प्राथमिक पंजीकरण OTR के समय आधार प्रमाणीकरण के लिए अनुमति दी है। एक राजपत्रित अधिसूचना में कार्मिक एक प्रशिक्षण विभाग ने SSC को इस संबंध में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा बनाए गए सभी नियम व कानूनों का पालन करने के लिए कहा है। यह बदलाव परीक्षार्थियों द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में जालसाजी और धोखाधड़ी की घटनाओं के बाद हुए हैं।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, एक्स प्लेटफॉर्म और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने चीन के हुलुनबोइर में हुए सेमीफाइनल मैच में दक्षिण कोरिया को 4-1 गोल से हराया। भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल किए। 13वें मिनट में उत्तम सिंह ने पहला गोल किया था। इसके अलावा जर्मनप्रीत सिंह ने भी गोल किया। दक्षिण कोरिया के लिए चिंग यांग ने एकमात्र गोल दागा। इस टूर्नामेंट में भारत ने अभी तक खेले अपने सभी मुकाबलों में जीत हासिल की है। फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम का सामना मेजबान टीम चीन से होगा। चीन ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराया है। भारत इस टूर्नामेंट का डिफेंडिंग चैंपियन भी है। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर में 10 दिवसीय गणेश उत्सव के तहत प्रतिमाओं के विसर्जन आज से शुरू हो गए हैं। भोपाल में गणेश मूर्ति विसर्जन के लिए जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस सतर्क है। सभी विसर्जन घाटों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। गोताखोर और पुलिसकर्मी 24 घंटे तैनात होंगे। बड़ी मूर्तियों को क्रेन और छोटी को कुंड में विसर्जित किया जाएगा। वहीं शहर में जुलूस रूट पर कुंड के अलावा स्टॉल भी लगेंगे। ईद मिलाद-उन-नबी का त्यौहार प्रदेश भर में आज हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मिलाद महफिल और सीरत सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें पैगंबर मोहम्मद के जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में बताया जा रहा है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मिलाद-उन-नबी त्यौहार की प्रदेशवासियों को, खासकर मुस्लिम भाइयों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। बात मौसम की। प्रदेश के कई हिस्सों में कल से तेज बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और मेहर समेत 38 जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा सतना, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, दमोह, सागर, छतरपुर और पांडुर्णा जिलों में तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया सक्रिय हो गया है। अगले 24 घंटे के दौरान इसका असर प्रदेश पर पड़ेगा, जिससे पूर्वी हिस्से में बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर और सागर संभागों के जिलों में कहीं कहीं और रीवा, शहडोल संभागों के जिलों में कई स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई है। भारत कल नई दिल्ली में खेल में डोपिंग के विरुद्ध यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के अंतर्गत कोष स्वीकृति समिति की तीसरी औपचारिक बैठक और COP9 ब्यूरो की दूसरी औपचारिक बैठक की मेजबानी करेगा। COP9 ब्यूरो के उपाध्यक्ष के रूप में भारत ने 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक को आयोजित करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। यह बैठक विश्वभर के मुख्य नीति निर्माताओं और गणमान्य व्यक्तियों को एक मंच प्रदान करेगा। इन बैठकों में डोपिंग रोधी से संबंधित मुख्य मुद्दों और खेल की उचित कार्यप्रणालियों के विकास पर भी चर्चा होगी। इसमें फ्रांस, इटली, रूस, सऊदी अरब, बारबाडोस, सिंगापुर, नीदरलैंड्स, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और जाम्बिया जैसे देशों के विशिष्ट प्रतिनिधि भागीदारी करेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा के प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी कल दादाजी धुनी वाले जिला चिकित्सालय में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्र का शुभारंभ करेंगे। आगरमालवा कृषि विज्ञान केंद्र में पोषक प्रबंधन विषय पर कल एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इसमें कृषि वैज्ञानिक डॉ. आरपीएस शक्तावत ने संतरे फसल में पोषक प्रबंधन, कीट व्याधि प्रकोप के प्रबंधन के विषय में विस्तार से जानकारी दी। और बैतूल में कल मुस्लिम समाज के युवक युवतियों का सामूहिक विवाह, इज्तिमाई शादी का आयोजन करीबी धार्मिक स्थल उमरी में किया गया। इसमें 1 दर्जन जोड़ों का निकाह कराया गया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश 2030 तक नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करेगा, कहा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने। कल से होगी प्रदेश भर में स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत। भारतीय टीम ने पुरुष हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जगह बनाई और प्रदेश के कई हिस्सों में कल से तेज बारिश होने के आसार, 38 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। इस बुलेटिन में इतना ही। अनुमति दीजिए, नमस्कार।